मिलितम एना तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो हम द्वारका में पहुंचे हैं, तो कई सारे धाम हैं भारत के, चार दिशाओं में चार धाम हैं। श्रील प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं, हाँ, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, बद्रीनाथ है, और कौन सा रहेगा, रामेश्वरम। तो हम कई बार सुनते हैं कि अलग अलग धाम की अलग अलग महिमा है, अलग अलग ग्लोरीज हैं। तो वैसे ही द्वारका एक भगवान का कई प्रिय धामों में से एक धाम है। तो द्वारका में भगवान सदैव ड्रेसिंग अपना श्रृंगार आदि करते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि भगवान बद्रीनाथ में या रेस्ट करते या उठते हैं, और रामेश्वरम में स्नान करते हैं, और द्वारका में उनके 16,108 रानियों के द्वारा अपने आप को विभूषित करते हैं, क्या कहते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो वैसे ही भगवान जगन्नाथपुरी में प्रसादम आदि भोगा को ग्रहण करते हैं, भोगा स्वीकार करते हैं। तो ऐसा ये जो धाम द्वारका धाम की कई सारी महिमा हैं जो शास्त्रों में वर्णित की गई हैं, और द्वारका धाम में कई सारी लीला स्थलियाँ हैं, और उनमें से ये जो स्थान जहाँ हम बैठे हैं ये द्वारका का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। पहले द्वारका का मतलब ही द्वारका मतलब है डोर, और का मतलब है ब्रह्म। ब्रह्म मीन्स परम ब्रह्म कृष्ण, हाँ, परम भगवान कृष्ण। तो भगवान की ओर जाने के लिए ये गेटवे हैं। जैसे भारत में आने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया है, मुंबई में आप जाते हो तो समंदर के किनारे, हाँ, तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है, मतलब ब्रह्म परब्रह्म के पास वापस जाना है, तो उसका ये गेटवे है, हाँ, ये जो द्वारका है। तो द्वारका के कई सारे नाम हैं शास्त्रों में, अलग अलग नाम और उनके मीनिंग्स को बताया गया है। जैसे गोपिकाएं जब यहाँ आई थी कृष्ण को मिलने के लिए, तो उनको भगवान ने बहुत सुंदर महल प्रदान किया, और वो गोपिकाएं उस महल में रहने लगी। तो इतना बड़ा महल कि उसमें कई सारे दरवाजे, कई सारे रूम, कई सारी सुविधाओं से परिपूर्ण था। तो गोपिकाएं तो उनको तो आदत नहीं है बड़े बड़े महलों की, हाँ, जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि वहाँ जब हम रुके थे प्रेम प्रकाश आश्रम में, तो वह स्नान करने वाले जो नल है वो कैसे ऑपरेट करे तो भी स्ट्रगल था, हाँ, उसमें ये भी एक स्ट्रगल था कि उसका जो क्या कहते शावर वो कैसे ऑन करे, हाँ, उसके लिए अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है। तो उसी प्रकार से गोपिकाएं वो तो ब्रज वधु हैं, ब्रज के गाँव में रहने वाली सरल हृदय की बालाएं हैं। तो वो ब्रज बालाएं जब यहाँ आए, और यहाँ तो बहुत बड़ा ऐश्वर्य उनके पास था और उनको आदत नहीं थी इन चीजों की, तो लेकिन जब वो रहे और दूसरे दिन उठे तो गोपिकाओं को बड़ा कठिन हुआ बाहर निकलना। हाँ, कि अरे दरवाजा कहाँ है, तो वो चिल्लाने लगी द्वार कहाँ, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो भगवान के धाम का नाम क्या पड़ा, द्वारका। तो ऐसे अलग अलग शास्त्र और आचार्य इन चीजों का वर्णन करते हैं। तो ऐसी गोपिकाएं फाइनली आई जाती है बाहर द्वारका से, उनके उस महल से। तो ये द्वारका के कई सारे नाम हैं, एक तो है द्वारका मती, एक है द्वारकावती, एक है द्वारकापुरी, एक है मोक्षपुरी। तो ऐसे द्वारका के कई सारे नाम हैं। हरिवंश पुराण में वर्णन आता है द्वारका का एक नाम जिसको कहते हैं वारी दुर्ग। वारी का मतलब है जल, तो जल के बीच में जो बना हुआ है वाटर फोर्ट, हाँ, उसको वारी दुर्ग कहते हैं। या फिर और भी संस्कृत में नाम है जिसको कहते हैं उदधि मध्य स्थान। उदधि मतलब समंदर के बीच में जो स्थान है वो ये द्वारका है। बल्कि कृष्ण बलराम या जो ये यदुवंशी आने से पूर्व द्वारका का नाम कुशस्थली था। क्या नाम था, कुशस्थली। जब भगवान यहाँ आए तो उसके बाद उसका नाम द्वारका या सुवर्ण द्वारका ये सारे नाम पड़ते हैं। तो कैसे है ये जो द्वारका है वो प्रकट हो जाता है, ये जो धाम भगवान का इस जगत में। तो गर्ग संहिता में वर्णन आता है, गर्गाचार्य लिखते हैं नारदा और राजा बहुलाश्व के बीच में जो संवाद है, इसका वॉल्यूम तेज कर लीजिए। तो राजा चला गया, हरी बोल। तो राजा बहुलाश्व और नारद के बीच में जब संवाद आता है, और तो जो बहुलाश्व हैं, राजा पूछते हैं नारद को कि मुझे बताओ ये द्वारका प्रकट कैसे हुई, कैसे ये द्वारका इस जगत में अवतरित हुई, हाँ, जो भगवान का बहुत प्रिय धाम है। तो नारदा तो हमेशा एक्सपर्ट है, दक्ष है उत्तर देने के लिए। तो नारद ने कहा कि जो भी व्यक्ति द्वारका की महिमा को सुनता है, द्वारका के अपीयरेंस को सुनता है, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो उन्होंने फिर एक लंबा इतिहास बताना शुरू किया। तो नारद ने कहा कि एक राजा थे मनु के जो पुत्र थे जिनका नाम था शर्याति, और ये शर्याति नामक जो मनु के पुत्र थे राजा वो बहुत शक्तिशाली थे, उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। बल्कि उन्होंने 10,000 साल तक इस भूतल पर या पृथ्वी पर राज्य किया, और फिर उनको 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तान बरही, एक का नाम था अनर्त, एक का नाम था भूरिसेन। तो ये जो 3 उनके पुत्र थे, राजा के पास पूरे पृथ्वी का साम्राज्य था। तो राजा ने उन 3 को 3 दिशाएं प्रदान की कि आप इस दिशा के राजा हो। उत्तान बरही को पूर्व दिशा, और अनर्त को पश्चिम दिशा, हाँ, और जो भूरिसेन है उसको दक्षिण दिशा का राजा बनाया। और उसने, उस राजा ने कहा, उस पिता ने कहा कि ये जो पृथ्वी है ये मेरी है, आप सब धर्म पूर्वक इसका पालन करो, क्योंकि मैंने अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने बल से इसको अर्जन किया है। हाँ, जैसे होता है ना कि बाप या पिता बहुत धन संपदा इकट्ठा करता है, अपने जीवन भर घर बनाएगा, महल बनाएगा, गाड़ियाँ लेगा, सब कुछ, फिर बच्चों को सौंपेगा तो कहेगा कि आप थोड़ा ध्यानपूर्वक इनका संभाल करो, मैंने अपना एक एक खून का बूंद खून खर्च करके मैंने इकट्ठा किया है। और वैसे ही करता है व्यक्ति, लाइफ टाइम हम अपना ब्लड लगा देते हैं इन सारी चीज़ों को एकत्रित करने के लिए, और फिर हमें अहंकार होता है कि ये मेरी वस्तुएँ हैं। तो वैसे उस राजा ने कहा कि ये पृथ्वी मेरी है, पृथ्वी मेरी है। तो ये सुनकर उनके जो पुत्र है अनर्त, अनर्त को कौन सा दिशा का राजा बनाया था
पश्चिम।
तो जब ये अनर्त है ये हंसने लगे अपने पिता की इस बात को देखकर, बेटा क्या करने लगा, हंसने लगा। बेटा बहुत बुद्धिमान था, अनर्त महान भक्त थे, उन्होंने कहा कि हे पिताश्री ये पृथ्वी आपकी नहीं है और ना आप इस पृथ्वी का पालन करने का सामर्थ्य रखते हो, बल्कि ये जो पृथ्वी है ये कृष्ण की संपदा है, कृष्ण की धरोहर है। हाँ, कृष्ण सर्वाधिक बलशाली है, कृष्ण के तेज के कारण ये पृथ्वी का अस्तित्व है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये जो सृष्टि आदि है ये कृष्ण के कारण ही संभव है। इवन जो सूर्य है, चंद्रमा है, हवा है, मृत्यु है, हाँ ये सारी चीजें कृष्ण के भय से कार्यरत रहती हैं। तो उन्होंने कहा, उस बेटे ने बोला अपने पिता को कि आप क्या करो, अपने इस भौतिक अहंकार को छोड़ दो, हाँ कि मैं इसका राजा हूं। कई बार पृथ्वी देवी भागवतम में वर्णन आता है कि वह हंसती हैं, वो कहते कि देखो हजारों हजारों राजा आते हैं और वो मुझे अपना बनाना चाहते हैं और मुझे प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ते लड़ते मर जाते हैं। हजारों सालों से मैं ये देख रही हूँ तो ये कितने मूर्ख लोग हैं, हाँ जो मेरे छोटे से टुकड़े के लिए क्या करते हैं, प्राप्त करने के लिए अपना जीवन बर्बाद करते हैं। इवन घरों में भी भाई भाई, हाँ छोटा सा कोई लैंड हो, एक गज हो, तो उसी के लिए लड़ाई झगड़े करेंगे, कोर्ट कचहरी। तो पृथ्वी सोचती है कि ये लोग कितने मूर्ख हैं, ये लोग जन्म लेने से पहले मैं यहाँ थी, ये मरने के बाद भी मैं यहाँ ही रहने वाली हूँ, हाँ लेकिन ये अज्ञानता के कारण ये मुझे अपना बनाना चाहते, लेकिन मैं किसी और की नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण की हूँ। तो कृष्ण की एक शक्ति है, भू शक्ति, जो ये पृथ्वी देवी है। तो ऐसे जब बोला उस बेटे ने कहा, अनर्थ ने कहा कि आप क्या करो, इन अहंकार को त्यागो और कृष्ण का सरल हृदय से भजन करो। तो शरियाती जो पिता थे उनको बहुत गुस्सा आया, उनको बहुत क्रोध उमड़ आया और उन्होंने कहा, हे खोटी बुद्धि वाले, मेरा बच्चा होकर, मेरा बेटा होकर ऐसी बातें करते हो, कहते कि निकलो यहाँ से, क्योंकि सबसे अधिक किसी चीज का हमारे हृदय में आघात होता है तो वाणी का होता है ना, वाग बाण कहते हैं उसको। दूसरा बाण लगेगा, निकालोगे थोड़ा ब्लड चला जाएगा, फिर आप उसको ठीक कर सकते हो मेडिसिन आदि के द्वारा। लेकिन जब वाणी का ये तीक्ष्ण बाण चलता है और किसी के हृदय में प्रघात करता है तो वो जख्म जल्दी भर के नहीं आती। हमें कोई बोलता है तो वो चीजें हम हमेशा याद रहती हैं, जो बिल्कुल अंदर लग जाती हैं, ठेंच पहुंचती हैं। तो उसी प्रकार से ये जो पिता थे शरियाती, उनको अपने पुत्र के जो वाग बाण हैं उनसे वो घायल हो गए, क्रोध के का वशीभूत होकर वो चिल्लाने लगे, अपने बच्चे को जो अनर्थ थे उनको डांटने लगे। उन्होंने कहा, गुरु बन गया है, शांति का उपदेश देते हो, मुझे सिखाते हो। तो इस प्रकार से वो बोलते गए, डांटते गए। तो फिर पिता ने, अभी पिता के पास करने के लिए क्या है, अधिक से अधिक बच्चा नहीं मानता, तो फादर कहता है निकल जाओ मेरे घर से। हाँ तो वैसे ही हुआ, हाँ उस शरियाती ने कहा कि जहाँ तक पृथ्वी है, जहाँ तक ये मेरा राज्य है, पूरी पृथ्वी उनके अधिकार में थी, वहां तक तुम निवास नहीं कर सकते, इस मेरे स्थान को खाली कर दो। हाँ तो जैसे ही ये कहा उन पिता ने, तो और वो बोले कि तुम जिनकी आराधना करते हो ना, जाओ नया पृथ्वी उनसे ले लो। किनकी आराधना करते थे वो? कृष्ण की। तो जो शरीर अनर्थ है वो वहां से निकल पड़ते हैं और उन्होंने भी कहा, जहां तक ये पृथ्वी है, आपका साम्राज्य है, वहां मैं निवास नहीं करूंगा, मैं वहां से चला जाऊंगा। तो वे समुद्र के तट पर आ गए, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, हम तो थोड़ा दूर आ गए, समुद्र वहाँ है जहाँ द्वारकाधीश है। तो वहाँ आए और उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की और फिर भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं अनर्थ का ये जो तपस्या देखकर। और भगवान प्रकट होते हैं अनर्थ को, अनर्थ के सामने, और वो खड़े हो जाते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोमांचित होकर उनकी स्तुति करने लगते हैं। तो कृष्ण कहते बताओ क्या चाहते हो। तो अनर्थ कहते कि मुझे अपने पिता ने घर से बाहर निकाला है, पृथ्वी से बाहर कर दिया है, मुझे निवास करने के लिए कुछ लैंड प्रदान करो, रहने के लिए कुछ स्थान दे दो। ध्रुवोपि यत् प्रसादेन ययो सर्वोत्तमं पदं नमो भगवते प्रणत क्लेशहारिने। तो उन्होंने कहा कि आपकी कृपा मुझ पर आप प्रदान कीजिए, ऐसे क्लेशों को जीवन से हरण करने वाले हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो भगवान ने कहा देखो पृथ्वी तो एक ही है, इस लोक में दूसरी पृथ्वी नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं इसलिए एक विशेष चीज तुम्हें प्रदान करूँगा। भगवान ने कहा क्योंकि मैं तुम्हारे भक्ति से संतुष्ट हो या आपकी भक्ति से संतुष्ट हो, इसलिए मैं अपना ये जो वैकुंठ का स्थान है उसका एक हिस्सा काट कर तुम्हें दे रहा हूँ। तो भगवान ने वो वैकुंठ जगत का जो एक एरिया है उसको काटा और ये जगत में लाके रखा, और वो क्या बना, द्वारका। तो ये जो द्वारका है इस जगत का भाग नहीं है, ये जगत का भूखंड नहीं है। भगवान वैकुंठ का सौ योजन लंबा चौड़ा भूखंड लाते हैं और इनको प्रदान करते हैं, जो सर्वाधिक शुभ प्रदान करने वाला था। तो फिर इस भूखंड को लाए तो उसकी जो नींव है भगवान ने सुदर्शन चक्र से बनाई, सुदर्शन चक्र उसके नीचे रखा और उसके ऊपर ये स्थान को स्थापित किया। और फिर अनर्थ ने 100,000 वर्ष तक राज्य किया वैकुंठ का वातावरण। तो उनके फादर ने सुना बेटा तो मुझसे कई कदम आगे हैं, कृष्ण की इतनी असीम कृपा को उसने प्राप्त किया है, तब से इस स्थान का नाम अनर्थ देश पड़ा। क्या नाम पड़ा? अनर्थ देश। तो ऐसे राजा अनर्थ ने बहुत सारे यज्ञ आदि किए थे। त्रिविक्रमो विजयते त्रयी विख्यात विक्रमः य कुश दमयित्वे माम चक्रे विप्रकुशस्थलीम। तो इसको क्योंकि यह बहुत सारे यज्ञ आदि हुआ करते थे तो यज्ञ के लिए कुश ग्रास आवश्यक होता है, मैट्स, तो वो सब जगह बिछाए गए थे जिसके कारण इस स्थान का नाम कुशस्थली भी पड़ा था। तो ऐसा ये जो द्वारका है जिसके बारे में और डिटेल में जो भी द्वारका की ग्लोरीज है वो हम शाम को डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसा ये जो द्वारका है जिसका महिमा अलग अलग शास्त्रों में वर्णित किया है, तो भगवान द्वारका में आकर निवास करते हैं। तो कई सारे कारण हैं कृष्ण क्यों द्वारका आते हैं, उसके अंतरंग कारण है, बहिरंग कारण है। लेकिन फिर जब भगवान यहाँ आए, कृष्णा वृंदावन कब छोड़ा था कृष्ण ने, जब भगवान 11 साल की उनकी आयु थी और वृंदावन वासियों के वो प्राण धन बन चुके थे। वृंदावन वासी चाहे आंखें बंद करते थे या खोलते थे तो दोनों समय एक ही पर्सनालिटी को देखते थे, किनको, कृष्ण को। हम आंखें बंद करते तो कुछ और दिखाई देता है, आंखें खोलते तो कुछ और दिखाई देता है, लेकिन ब्रजवासियों का ऐसा नहीं, इन एंड आउट सेम है, अंदर भी कृष्ण है बहिर है ना, बहिर नरसिंह क्या है, हाँ बाहर भी नरसिम्हा है, हृदय में भी नरसिम्हा है। तो उसी प्रकार से ब्रजवासी थे। तो ऐसे कृष्ण 11 साल की आयु में जब अक्रूर उनको लेने के लिए आते हैं, वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं, तो मथुरा में भगवान अक्रूर के साथ जाते हैं। तो भगवान विशेष रूप से निकलने वाले थे मथुरा के लिए, और बल्कि सुबह सुबह जब रथ नंद महाराज के आंगन में आया तो नंद महाराज से बात करने लगे अक्रूर, सुबह नहीं शाम के समय आए थे अक्रूर वृंदावन में, और फिर उनसे कहा कि आपको आमंत्रण दिया है, भेजा है कंस ने, आपके पुत्रों के साथ वहाँ आना है। कहाँ आना है, मथुरा के लिए। तो भगवान तो तैयार हो गए थे और भगवान जानते थे कि क्या हेतु है कंस का। तो फिर अक्रूर दूसरे दिन सुबह सबको तैयार करने के लिए तैयार होने के लिए बताते हैं। नंद महाराज आदि तो बैलगाड़ी लेकर निकलते हैं ब्रजवासियों के साथ, यशोदा माता नहीं जाती, गोपिकाएं नहीं निकलती। तो कृष्ण बलराम जब रथ पर बैठते हैं तो निकलने वाले थे और जब पता चला कि कृष्ण जा रहे, बल्कि कृष्ण ने कभी वृंदावन को नहीं छोड़ा था, तो कृष्ण जैसे पता चला गोपिकाओं को कि कृष्ण जा रहे हैं तो सबसे अधिक दुखी हो गए। जैसे ये न्यूज उनके कानों में गई कि अक्रूर उनको लेके जा रहे हैं तो लगा कि कुछ ना बिजली कड़क जाती तो हम डरते हैं, तो वैसे हो गया। वो भागने लगी, अपने सारे काम काज को त्याग कर नंद महाराज के आंगन में दौड़ने लगी कि कहाँ जा रहे हैं हमारे कृष्ण, कौन उनको लेने लेके जा रहे हैं। तो आए तो देखा कृष्ण अभी बैठ गए थे, रथ के ऊपर सवार हो चुके थे। तो ये गोपिकाएं सोचते थे कि कोई क्यों नहीं कह रहा है, कृष्ण को रोकने के लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा है, बल्कि कोई उनको रोक नहीं रहा था। तो ये गोपिकाओं ने अपनी सारी लाज भय आदि को त्यागा और रथ को पकड़ने लगी, अलग अलग भागों को घोड़ों के सामने आगे गिरने लगे और कृष्ण को निवेदन करने लगे कि आप ब्रज को छोड़कर मत जाइए, आप चले जाएंगे तो हम किस लिए जीवित रहेंगे। तो ऐसी गोपिकाएं बहुत अधिक कृष्ण विरह में उन्मत्त हो गए थे और फिर कृष्ण ने उनको सांत्वना देने के लिए कहा कि आयो सहो, मतलब मैं आऊंगा, बस एक शब्द ही बोल के चले गए थे। कृष्ण गए मथुरा में, उन्होंने प्रवेश किया तो प्रवेश का वर्णन भागवतम बहुत सुंदर रूप से वर्णन करता है कि अक्रूर ने कहा कि चलो मैं अपने घर ले चलता हूँ या मेरे साथ मथुरा में प्रवेश करो। तो कृष्ण कहते नहीं, मैं अपने मित्रों के साथ मथुरा में प्रवेश करूँगा, क्योंकि वो गांव में रहते थे और अभी कहाँ आए हैं, सिटी में। तो सिटी को एक अलग रूप से वो देखना चाहते थे। तो वो उनको छोड़कर प्रवेश करने लगते मथुरा में। तो वर्णन आता है कि जैसे कृष्ण ने मथुरा में प्रवेश किया तो सारे लोग अपने अपने घरों के ऊपर, छतों के ऊपर आ गए। सारी स्त्रियां पुरुष जो भी कार्य कर रहे हैं, स्त्रियां कपड़े पहन रही है तो आधे कपड़े पहन के वो छत के ऊपर है, आंखों में काजल लगा रही है तो आधे आधे आंख को काजल लगा के वहां पहुंच गई है, बच्चों को कुछ से खिला रहे तो बच्चों को वहां छोड़कर छत के ऊपर भाग रही है, और सारे पुरुष अपने सारे कार्यों को छोड़कर छत के ऊपर खड़े हैं, रोड पर खड़े हैं केवल कृष्ण को देखने के लिए, और कृष्ण अपने सखाओं के संग में मथुरा में प्रवेश करते हैं। तो ये सारे मथुरावासी सोचते हैं कि ब्रजवासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सौंदर्यमय कृष्ण को देखने का, रोज उनको देख रहे हैं ऐसे सुंदरता को। तो वो बहुत अधिक अपने आप को क्या कह सकते हैं, अपने आप को अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली या अभाग्यशाली सोचते थे। तो भगवान जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, माली से मिलते हैं, सबसे पहले तो धोबी से मिलते हैं, धोबी देखते कपड़े इसके पास बड़े बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, भगवान ने कहा मुझे भी तो दे दो थोड़े। वो कहते अरे गाँव के बच्चे कहाँ से आए हो, ये तो कपड़े किसके हैं, कंस के हैं। तो नहीं दे रहा था, भगवान ने कहा नहीं दे रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, एक थप्पड़ मारे तो उनका गर्दन ही कट गई। अंगान यश सकल इंद्रिय वृत्ति मानती है, भगवान आपने किसी भी शरीर के अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो धोबी को मिलने के बाद फिर वो एक दर्जी को मिलते हैं, वो उनके लिए अच्छे वस्त्र देते हैं, फिर माली को मिलते हैं, फिर कुब्जा जा रही थी, क्या लेकर जा रही थी, चंदन। वो कहते हे सुंदरी कहाँ जा रही हो, अभी उसको किसी ने सुंदरी नहीं कहा था नहीं, तो उसने कहा ये कौन है जो सुंदरी कह रहा है, पीछे देखा तो कमल नयन श्याम सुंदर कृष्ण। तो उन्होंने कहा ये क्या ले जा रही हो, उन्होंने कहा ये विशेष चंदन है जो कंस के लिए मैं रोज ले जाती हूँ, जो जिसको धारण करके इसका लेपन करके कंस प्रसन्न होता है। तो उन्होंने सोचा ये तो आपके लिए उचित है, तो उन्होंने कृष्ण को अर्पित किया, कृष्ण बलराम को लगाया उसने पर्सनली अपने हाथों से, तो कृष्णा उसकी सेवा भावना को स्वीकार करते हैं। और जैसे क्योंकि सर्विस एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है, इस सेवा को जब भगवान स्वीकारते हैं तो उसके बदले में कुछ देना चाहते हैं कृष्ण, केवल लेना 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 नहीं, नहीं क्या है देना भी सीखना चाहिए हमें। तो भगवान ने क्या किया, दिया, जो बोला था भगवान ने, हे सुंदरी, तो भगवान ने उसको सौंदर्य प्रदान किया, सबसे सुंदर युवती बना दिया मथुरा का। तो ऐसे भगवान जाते हैं, फिर धनुष को तोड़ते हैं, फिर दूसरे दिन कुवलयपीड को मारते हैं, फिर चानुर मुष्टिक से युद्ध करते हैं, और फाइनली कंस के बाल पकड़कर रत्न सिंहासन से खींच के मल्ल युद्ध भूमि में लाते और उसको मार डालते हैं। तो भगवान फिर मथुरा में रहने लगे और फिर कृष्ण वापस नहीं गए, बल्कि भगवान ओरिजिनल रूप से हमेशा वृंदावन में निवास करते हैं। अपने विस्तार रूप से वासुदेव कृष्ण के रूप में द्वारका या मथुरा में निवास करते हैं, संकर्षण के रूप में भगवान बलराम के रूप में मथुरा और द्वारका में निवास करते हैं, लेकिन जो मूल कृष्ण बलराम है वो हमेशा कहाँ निवास करते, सदैव वृंदावन। इसलिए कृष्ण कहते हैं एक पादम न वृंदावन परित्यज पादम एक न गच्छति, कि मैं वृंदावन को छोड़कर एक पाव भी बाहर नहीं जाता हूँ। तो कृष्ण हमेशा ब्रज में ही है, वो अपने प्रति विरह को वो देखते हैं, उनके आंखों से ओझल है वृंदावन में। तो ऐसे कृष्ण सदैव वहां निवास करते हैं वृंदावन में। तो नंद महाराज जब वापस गए तो ये गोपिकाएं और यशोदा माता आदि सब सोच रहे थे कि कब कृष्ण शायद आ गए होंगे, देखा कृष्ण वापस नहीं आए। तो तब से माता यशोदा का जो दुख है, सबसे अधिक दुखी थी माता यशोदा, रो रो कर उनके आंखों में आंसू ही नहीं बचे थे, ड्राई हो गया था। हाँ, गोपिकाएं भी। तो फिर बहुत लंबा समय बीतता है, वृंदावनवासी बहुत दुखी होते हैं। तो फिर कृष्ण भी यहाँ मथुरा में, उनको नींद नहीं आती, कृष्ण भी यहाँ रोते रहते हैं। कृष्ण के पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था जिनके पास वो बताते, लेकिन एक उनको मित्र मिला था, अपने चाचा का बेटा, कौन थे, उद्धव। तो उद्धव ये बृहस्पति के शिष्य थे, और ऐसे उद्धव बहुत विद्वान थे, कृष्ण को कुछ सलाह लेनी भी हो तो उद्धव से लिया करते थे, अपने मन की बात बोलनी हो तो उद्धव से। तो फिर एक दिन कृष्ण उद्धव को अपने नजदीक बुलाते हैं और उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव का हाथ पकड़ते हैं और उद्धव को कहते हैं, हे उद्धव, मोहे ब्रज विसरत नाय, मुझे क्या भूल नहीं सकता, मैं ब्रज को नहीं भूल सकता, मैं सारी दुनिया को भूल सकता हूँ, लेकिन एक वस्तु है जिसे मैं नहीं भूल सकता कभी भी, वह है ब्रज वृंदावन। तो ऐसा जब कहा तो उन्होंने बोला कि आप क्या करो, है उद्धव, वृंदावन चले जाना, जहाँ मेरे माता पिता नंद है, यशोदा है, उनको सांत्वना प्रदान करना, और गोपिकाओं के लिए मैं संदेश देता हूँ। तो पहली बार कृष्ण ने कुछ लिखा था, वृंदावन में कुछ नहीं लिखते थे, अनपढ़ गवार थे, लेकिन यहाँ जब मथुरा आए तो सबसे पहले स्कूलिंग किए गए उनकी। कहाँ भेजा स्कूलिंग के लिए, उज्जैन, अवंती, आज का जो उज्जैन है उसका नाम अवंती था, जहाँ सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा, तो वहाँ भगवान अपना स्कूलिंग कंप्लीट किए, सीख के आ गए। 64 दिनों में सारा खत्म, हम कितने साल लगाते हैं, तो भगवान ने कुछ ही दिनों में सारा विद्वता प्राप्त की और वापस आए, और पहले कुछ चीज़ लिखी तो किसके लिए लिखा, गोपिकाओं के लिए लिखा, एक लंबा संदेश लिखा और उद्धव के हाथों में दिया और उद्धव को भेजा। तो उद्धव की एक खासियत थी, उद्धव माया से बचने के लिए उनके पास एक युक्ति थी, क्या करते थे, वो कोई भी चीज़ ऐसी यूज नहीं करते थे जो कृष्ण ने यूज नहीं की हो, जो भी कृष्ण यूज करते थे वही चीज़ें यूज करते थे। कृष्ण ने जो कपड़े पहनने निकाल के रखे होंगे तो वो पहना करते थे, जो माला कृष्ण ने पहनी थी वो पहना करते थे, जो शूज पहने थे वो पहना करते थे। महाप्रसाद, महा क्या करता है, हमें बचाता है, भौतिक दूषण से बचाता है। तो ऐसे उद्धव जो सारी चीजें कृष्ण की यूज करते थे, और कृष्ण कभी अपना उच्चिष्ट किसी को नहीं देते थे, लेकिन किसको देते थे, उद्धव को। सारे यदुवंश कहते थे कि कृष्ण जब भोजन करते तब एक ही व्यक्ति को अलाउड है उनके पास बैठना, और वो उद्धव हुआ करते थे। तो ऐसे उद्धव से भगवान का विशेष प्रीति था, और उद्धव का भी कृष्ण के लिए बहुत बड़ा गहरा अनुराग था। और ऐसे उद्धव को भगवान सोचते हैं कि तुम अभी वृंदावन जाओ। वैसे ये तो बाहर एक कारण हुआ, लेकिन अंदर की बात क्या थी कि उद्धव जो भगवान से बहुत अधिक प्रेम करते थे उद्धव, या भगवान भी उद्धव से प्रेम करते थे, तो उनको सबसे बेस्ट चीज देना चाहते थे। तो वो बेस्ट चीज क्या थी? हाँ, ब्रज भक्ति। क्या है? ब्रज भक्ति। मतलब आप किसी से प्रेम रखते हो तो उनको आप बेस्ट चीज ऑफर करना चाहते हो। नहीं, हम भगवान से प्रीति रखते तो भगवान के लिए बेस्ट गार्डन्स होने चाहिए, भगवान के लिए बेस्ट भोगा होना चाहिए। तो उसी प्रकार से इस संसार में भी देखा जाता है, हाँ, किन्हीं से हम एक अफेक्शन रखते हैं, स्नेह रखते हैं, तो उनको हम कुछ बेस्ट चीज ऑफर करना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण भी उद्धव को उनके पास जो बेस्ट चीज है वो देना चाहते थे। हाँ, क्योंकि वो भक्ति तो करते थे भगवान की, लेकिन जो भक्ति ब्रजवासी करते हैं वो जो प्रेम की भावना है वो उद्धव को सिखाना चाहते थे। तो उद्धव के लिए वो भगवान भेज रहे थे ट्रेनिंग के लिए। कहाँ भेज रहे थे? जैसे कुछ दिनों के लिए हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, क्रैश कोर्स होता है ना, प्रेमा भक्ति का क्रैश कोर्स हो रहा था कहाँ? वृंदावन में। तो ऐसे उद्धव को भेजा, तो उद्धव वहां जाकर क्रैश कोर्स करने गए। जब उद्धव पहुंचे शाम के समय में वृंदावन में, तो देखा कि वृंदावन का वातावरण कृष्णमय है। वहां की धूलि को भी देखा या पृथ्वी को देखा तो सब जगह कृष्ण के चरण चिन्ह है, और सारी गव्वे अपने बछड़ों के साथ भाग रही हैं। और वो फाइनली नंद महाराज के घर में पहुंचते हैं, जहां नंद महाराज दुखी थे, माता यशोदा भी दुखी थी, और वो रथ को खड़े करते हैं और अंदर जाकर उनसे बात करते हैं रात्रि में। तो नंद महाराज कहते हैं कि अभी वहां वो कैसे हैं, उग्रसेन कैसे हैं, वसुदेव कैसे हैं, देवकी आदि, वो लोग सुखी तो हैं? और ये सारी चीजें पूछने के बाद वो कहने लगे नंद महाराज कि ये जो कृष्ण है क्या हमारा स्मरण करते हैं, कभी हमारी याद करते हैं, कभी गोवर्धन के बारे में याद करते हैं, कभी गवों का स्मरण करते हैं, गोपिकाओं का? तो इस प्रकार से नंद महाराज बोलते रहे, रोने लगे। तो हाँ, ये सोचने लगे उद्धव कि इतना भी कोई प्रेम कर सकता है कृष्ण से? माता यशोदा भी रोते जा रहे थे कंटिन्यूसली जब से ये आए थे उद्धव। जब सुबह हुआ तो गोपिकाएं सबसे पहले सुबह सुबह इनका दर्शन करने आती थी। किनका? नंद महाराज। और क्योंकि कृष्ण तो चले गए थे, वो जानते थे कि सर्वाधिक दुखी हैं, तो ये गोपिकाएं सुबह जल्दी उठा करती थी और आती थी, तो दूर से देखा आज भी इनके घर के सामने रथ खड़ा है। उनको किसका स्मरण आया होगा? अक्रूर का। किसका? क्योंकि रथ को देखने मात्र से ऐसे रथ ने हमारे प्यारे कृष्ण को लेके गए थे। तो अभी रथ देखा तो ये दुखी हो गए। उनके अंदर ये भावना आई कि अभी जो भी रथ मिले उसको तोड़ेंगे हम, हाँ, क्योंकि रथ ने हमें अपने जीवन से कृष्ण ले गए हैं। तो ऐसे जब हुआ तो वो जब उनको पता चला कि कृष्ण नहीं है या अक्रूर नहीं है, कोई और व्यक्ति आए हैं। उद्धव बाहर निकले उसी समय, तो दूर से देखा उन्होंने उद्धव को, तो देखते ही वो सोचने लगे ये तो कृष्ण है, क्योंकि उद्धव दिखते थे कृष्ण के समान, और वस्त्र भी कृष्ण के ही पहनते थे। जैसे जैसे गोपिकाएं नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि यह कृष्ण नहीं है, ये तो उद्धव है। फिर उद्धव उनसे मिलते हैं, गोपिकाओं से मिलते हैं, और उद्धव उनसे बातें करते हैं, कृष्ण के बारे में सारी चीजें बताते हैं। तो उद्धव उनसे कहते मिलते हैं, तो सुनाई दे रहा है आपको? कीर्तन हो रहा है अंदर, ठीक है, इसका वॉल्यूम नहीं तेज हो सकता ना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, जोर से बोले फिर से, तो जब उद्धव गोपिकाओं से मिलते हैं
तो उस समय सारी गोपिकाएं अलग अलग प्रकार से कृष्ण के बारे में उनको बोलने रखती हैं। श्रीमती राधिका कहती है कि ऐसे कृष्ण जिनको प्राणियों का वध करने में कोई दया नहीं है, वह हमारे जैसे स्त्रियों का सरलता से वध कर सकते हैं। भगवान ने वृंदावन में कितने प्राणियों को मारा था, सारे प्राणी थे ना, आघासुर, बकासुर, हाँ, ये सारे अलग अलग प्राणी थे, अरिष्टासुर। तो इस प्रकार से सारी गोपियाँ उनको ये सब कह रहे थे। तो उस समय ये गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हमें आप कृष्ण से मिलाओ, कृष्ण तो द्वारका चले गए हैं। हाँ, उसके बाद द्वारका चले गए थे मथुरा से। तो फिर उद्धव उनको कहते हैं कि मैं आपको मिलाऊंगा। तो फिर एक दिन उद्धव के साथ ये सारी गोपिकाएं द्वारका की यात्रा के लिए निकलती हैं। बल्कि कृष्ण देख उद्धव देखते हैं कि ये गोपिकाएं जैसे कृष्ण का स्मरण करती हैं, तुरंत उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उद्धव ने सोचा कि ये जो ब्रह्मा है, शिव है, ये सब इतनी ऊंचा पद प्राप्त नहीं कर पाए भगवान की भक्ति में, इससे भी ऊंचा पद इन गोपिकाओं ने प्राप्त किया है। तो उद्धव ऐसे गोपिकाओं का स्मरण करते हुए कहते, अहो नंद व्रज श्रीनाम, कि ये नंद महाराज के गांव की जो ये स्त्रियां हैं, उनके चरण कमलों की धूलि में अपने सर में लेना चाहता हूँ। इतना बड़ा विद्वान, वो गांव की उन स्त्रियों की धूलि लेना चाहते थे अपने सर में। क्यों? क्योंकि इनके हृदय में कृष्ण के लिए बहुत गहरी प्रगाढ़ आसक्ति थी। तो ऐसे जब उद्धव ने सोचा, तो फिर ये गोपिकाएं उद्धव के साथ आती हैं, पद यात्रा करती है। कौन सी यात्रा? पैदल, वृंदावन टू द्वारका। कौन सी? कितना दूर है वृंदावन टू द्वारका? राधा रानी आदि सखियों के साथ ये सारी गोपिकाएं निकलती हैं, और एक ही उनके हृदय में कृष्ण को मिलने की लालसा है, और यही वास्तव में यात्रा का अधिकार है। हम यात्राओं में जाते हैं तो अधिकार क्या है? हमारे हृदय में लालसा होनी चाहिए उस धाम के लिए, उस विग्रह के लिए, उस स्थान के लिए, हाँ, उस स्थान की महिमा के लिए लालायित होना चाहिए हमें। हाँ, जैसे किसी चीज़ को देखते हैं, खाने की वस्तु, तो हमारी जीभ तुरंत लालायित होती है, नहीं, पानी छोड़ने लगती है। हाँ, तो ऐसा अधिकार व्यक्ति के पास, ऐसी लालसा व्यक्ति के पास होनी चाहिए किसी धाम में जाने के लिए। हाँ, अदरवाइज वो धाम में हम, क्योंकि ये जो गोपिकाएं हैं, वो अपने प्राणनाथ या अपने जो परम प्रेमी हैं कृष्ण हैं, उनको मिलने की एक उत्कंठ इच्छा उनके हृदय में थी। और ये गोपिकाएं निकले भी वृंदावन से, तो कैसे निकली? पूरे रास्ते में कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करते हुए निकली, गाते जा रहे थे। गोवर्धन लीला से लेकर सारी लीलाओं का, कैसे पूतना का वध किया, तृणावर्त का वध किया, बकासुर, आघासुर आदि, वत्सासुर, हाँ, इन सारे असुरों का वध, और उनकी जो मक्खन चोरी आदि की लीलाएं हैं, इन सब का वर्णन करते हुए गोपिकाएं यहाँ पहुँचती हैं, जिस स्थान में हम बैठे हैं। तो ये जो स्थान है, इसको गोपी तालाब कहते हैं अभी, लेकिन इससे पहले ही इस स्थान का नाम था मय सरोवर। हाँ, जो दानवों के जो आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, वो मय है, मय दानव, और देवताओं के इंजीनियर कौन है? विश्वकर्मा है। तो ये जो मय दानव था, उसने यहाँ द्वारका के इस भाग में एक सरोवर का निर्माण किया था, जिस सरोवर का नाम था मय सरोवर, जो बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर था। तो जब ये सारे गोपिकाएं उद्धव के साथ पहुंची यहाँ इस स्थान में, मय सरोवर के किनारे आए, तो उद्धव ने कहा कि आप अभी यहाँ ही रुको, मैं अभी कृष्ण को लेके आता हूँ। तो कृष्ण तो द्वारका में है आगे, तो उद्धव कृष्ण को लाने के लिए निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले गोपिकाओं को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके कृष्ण को लाने के लिए वो जाते हैं। तो गोपियाँ कहते कि ये सुंदर सरोवर किसका है? तो उद्धव कहते कि ये तो जो महान दैत्य हैं मय दानव, उसका ये सरोवर है। तो उद्धव को वो कहते, भागो यहाँ से जल्दी, आप क्या करो, श्याम सुंदर कृष्ण को जल्दी जल्दी लेके आओ, जो हमारे आँखों में या नयनों में आनंद की वर्षा करने वाले हैं। तो फिर उद्धव दौड़ते हुए जाते हैं और कृष्ण को मैसेज देते हैं। तो कृष्ण अपने महल को छोड़कर अपने रानियों को त्याग कर दौड़ते हुए गोपियों को मिलने के लिए स्थान में आते हैं। और कृष्ण जैसे दूर से आ रहे थे तो गोपिकाओं ने इतने लंबे समय के बाद कृष्ण को देखा था। कृष्ण को जब देखा कि गोपियों ने देखा, अरे देवकी नंदन, क्योंकि कृष्ण यहाँ यशोदा नंदन नहीं है, यहाँ कौन है? हाँ, वसुदेव नंदन है। वृंदावन में यशोदा नंदन है और वहाँ नंद नंदन है, ब्रजेंद्र नंदन है। तो ऐसे कृष्ण जब दूर से आए तो उन्होंने देखा कि कृष्ण ने इतने सुंदर सुंदर वस्तुएं पहनी है। उन्होंने मस्तक पर एक मुकुट धारण किया है, मकराकृति कुंडल उन्होंने धारण किया है, पीताम्बर उन्होंने धारण किया है। तो ये जब देखा तो गोपिकाएं देखते ही मूर्छित हो गए, कई समय के लिए यहाँ मूर्छित हुए। फिर कृष्ण बिल्कुल ही नज़दीक आए, गोपिकाओं को पुकारा तो गोपियाँ फिर से सचेत हो जाती है, उठती है और रोने लगती है। सारी गोपिकाएं इस स्थान में विलाप करने लगती हैं। वो कहते कि हे नाथ, हे प्राणवल्लभ, हे ब्रजेश्वर कृष्ण, हे मनमोहन कृष्ण, आप कुछ दया है कि नहीं आपके हृदय में? आपका हृदय इतना कठोर कैसे हुआ है? जिन्होंने आपको बचपन में पालन किया, पोषण किया, जिन्होंने आपको सबने आपका हृदय दे दिया, उन सबको छोड़कर तुम कहाँ चले आए हो? द्वारका चले आए हो। तो इस प्रकार से हाँ, सारे जो गोपिकाएं हैं कृष्ण को एक प्रकार से कोस रहे थे, डांट रहे थे, लेकिन फिर भी कृष्ण कहते कि नहीं नहीं, मैं कभी आपका परित्याग करके नहीं जाता हूँ। हे गोपिकाओं, मैं सदैव आपके संग में हूँ, आपके पास निवास करता हूँ। तो इस प्रकार से गोपिकाएं जब भगवान के नज़दीक यहाँ थी तो भगवान ने कहा कि इस जगत में मेरे कृपा या अनुग्रह का कोई पात्र है तो हे गोपिकाओं आप हो, आपसे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है। तो फिर भगवान ने गोपिकाओं के यहाँ मिलन के स्मरण हेतु एक सरोवर का निर्माण किया, जिसको क्या कहते हैं, गोपी तालाब। हाँ, गोपी तालाब का निर्माण किया और फिर गोपी तालाब में भगवान गोपियों के संग में, श्रीमती राधा रानी आदियों के संग में यहाँ कई प्रकार की जो लीलाएं हैं हम वो करने लगे, जल क्रीड़ा करने लगे। तो फिर जब ये जल क्रीड़ा आदि कर रहे थे तो गोपियों का जो श्रृंगार आदि गोपियों ने किया था, जो भी उन्होंने चंदन या कस्तूरी वगैरह जो भी सेंट धारण किया था, काजल और कुमकुम और बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारे उनके और उनके जो चरण धूली हैं ये इस जल के अंदर गिरती हैं सारे धोकर, और फिर वो नीचे बैठ जाती हैं, जिसके द्वारा क्या प्रकट होता है, गोपी चंदन। हाँ, ये गोपियों के इन सारी चीज़ों से बना हुआ गोपी चंदन है जो हमें प्राप्त होता है। और मतलब यहाँ की मिट्टी ने वो सारी चीज़ें पकड़ ली और वो सारी मिट्टी एक प्रकार से स्पिरिचुअलाइज्ड हो गई, आध्यात्मिक हो गई। तो फिर ये जो मिट्टी है ये गोपी चंदन के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है और सारे जो साधकाज है, सारे जो वैष्णवाज हैं वो इसको अपने माथे पर धारण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पांच चीज़ें इस जगत में दुर्लभ हैं। कौन सी है? गोमती, गोमय स्नानम, गोदानम, गोपी चंदनम, दर्शनम, गोपीनाथस्य, गकारा पंच दुर्लभा। जो ग से शुरुआत होता है, भगवान को ग से शुरू आने वाली चीज़ें अच्छी लगती, जैसे इसी कारण से इसका नाम गोपी तालाब रखा। तो एक चीज़ है गोमती नदी, गोमती का स्नान आदि, ये एक दुर्लभ है। और दूसरा है गोमय स्नान, गोमय मतलब गाय का जो दूध है, दही है, मक्खन है, उसका गोबर है, गोमूत्र है, इनसे स्नान या अभिषेक, ये भी दुर्लभ है। और गोदान, गाय का दान करना, या फिर और है गोपी चंदन। गोपी चंदन इस जगत में सबसे दुर्लभ वस्तु है। और दर्शन गोपीनाथस्य, गोपीनाथ का दर्शन भी व्यक्ति को प्राप्त होना, यह भी इस जगत में दुर्लभ वस्तु है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गोपी भूमेश्च महात्म्यम शृणु पाप हरम परम। कोई व्यक्ति यहाँ आता है और इस गोपियों के इस भूमि के बारे में सुनता है तो श्रवण करने मात्र से उसके शरीर में जो अनगिनत पाप राशि है वो खत्म होने लगती है। हाँ, तो ये क्या है? गोपी अंगराग संभूतम गोपी चंदनम उत्तमम, गोपी चंदन लिप्तांगो गंगा स्नानम फलम लभेत। शास्त्र कहते हैं कि ये गोपी चंदन क्या है, गोपियों का अंगराग है, जिन्होंने यूज की हुई चीजें और उनकी चरण धूलि है। तो कोई व्यक्ति गोपी चंदन को केवल धारण करता है तो उसको गंगा स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गंगा से भी महान शुद्ध या पवित्र करने वाली चीज ये गोपी चंदन है, जिसको व्यक्ति को नियमित रूप से धारण करना चाहिए। गोपी चंदन लगाने मात्र से गंगा का स्नान प्राप्त होता है, हमें दूर दूर तक गंगा स्नान करने जाने की आवश्यकता नहीं है। महानदी नाम स्नानश्च पुण्यतश्च दिने दिने गोपी चंदन मुद्रा भी मुद्रितो यह सदा भवेत। तो अलग अलग तीर्थों में स्नान करने के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं, कितना धन टाइम आदि खर्च करते हैं, लेकिन केवल इस गोपी चंदन को अपने शरीर में धारण करते अलग अलग स्थानों में, तो ये सारे तीर्थ आदि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए शास्त्र कहते कि रोज बिना किसी भूले व्यक्ति को अपने माथे पर और अपने शरीर पर गोपी चंदन धारण करना चाहिए, क्योंकि ये गोपी चंदन साक्षात ब्रज धूली है। क्या है? ब्रज धूली। इस संसार में सर्वोत्कृष्ट कोई चीज है तो वृंदावन की रज है। गंगा मृदम द्विगनम पुण्यम चित्रकूट रजस्मता, जो गंगा से भी चित्रकूट की जो मिट्टी है वो दो गुना अधिक महत्वपूर्ण है। तस्मा दश गुणम पुण्यम रज पंचवटी भवम, चित्रकूट से भी उन्नत मिट्टी कहाँ की है? पंचवटी, जहाँ सीता देवी भगवान राम आदि ने वास्तव्य किया था। तस्मात् शतगुणम पुण्यम गोपी चंदनकम रजः, उससे भी 100 गुना बढ़कर है गोपी चंदन का ये जो मिट्टी है। गोपी चंदनकम विद्धि वृंदावनम रजसमः, गोपी चंदन वृंदावन के मिट्टी से अभिन्न है। ब्रज रज में हम लोटपोट होना चाहते हैं और कोई व्यक्ति अपने शरीर में गोपी चंदन को धारण करता है तो एक समान है। इसलिए कहते गोपी चंदन लिप्तांगा यदि पाप शतेर युतम, यदि कोई गोपी चंदन बहुत किसी के जीवन में पाप है तो गोपी चंदन अपने शरीर को लगाता है, धारण करता है, तो वो व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और कहते नित्यम करोति ये पापी गोपी चंदन धारणम, इवन कोई व्यक्ति कितना ही पापी क्यों ना हो हर रोज वो चंदन को धारण करता है, गोपी चंदन को। यह प्रयाति हरेर धाम गोलकम प्रवृत्ते परम, वो गोलक वृंदावन या भगवान के धाम जाने का अधिकारी होता है। हाँ, शास्त्रों में इसके लिए एक उदाहरण देते हैं व्यासदेव। व्यासदेव कहते हैं कि सिंधु देश का एक राजा था जिसका नाम था दीर्घबाहु। तो ऐसा राजा इतना दुष्ट व्यक्ति कि संसार में कोई इतना दुष्ट नहीं था, ऐसा दुष्ट व्यक्ति भारत में वो हमेशा ब्राह्मणों का हत्या करता था। एक बार उसने 10 गर्भवती स्त्रियों की हत्या की, ब्राह्मणों की हत्या की कई हजारों, और वो निकला शिकार करने के लिए अपनी सेना के साथ जंगल में। जब वो सेना के साथ जा रहा था, उसका जो तरकस है बाणों से भरा हुआ था, रथ में बैठकर जा रहा था, तो कई सारे हजारों हिरणों को उसने मारा। और फिर हिरणों को मारने के बाद एक गाय का भी उसने हत्या किया, कपिला गाय। और फिर निकल रहा था वापस अपने राज्य में, तो उसका मंत्री ने सोचा इतना दुष्ट है, तो मंत्री ने क्या किया, उस राजा का राज्य खुद प्राप्त करने के लिए जंगल में ही राजा को तलवार से मार दिया, उसकी गर्दन काट दी राज्य के लोभ के कारण। तो फिर इतना पापी था तो यमदूता जाते उस पापी व्यक्ति को ले जाने के लिए। यमदूत जब ले गए तो चित्रगुप्त, चित्रगुप्त का काम ही है, जैसे सीसीटीवी, सीसीटीवी है ना, कि आप सीसीटीवी के अंडर हो। तो चित्रगुप्त का मतलब क्या है, मतलब सीक्रेटली जो फोटोग्राफी करते हैं, चित्र और गुप्त। तो चित्रगुप्त क्या करते हैं, सीक्रेटली फोटोग्राफी करते हैं आपके पाप कर्मों का। तो ऐसे चित्रगुप्त को पूछा कि इनके लिए दंड क्या है, तो चित्रगुप्त ने कहा कि इसको तो जब तक ये सूर्य और चंद्रमा है तब तक इसको अलग अलग नरकों में डालो, जिसमें ये सड़ता रहे। तो फिर एक कुंभीपाक नरक है जिसमें ऑयल ऐसे बॉइल्ड होता है, हमें कितना आनंद आता है जब फ्लावर के पकोड़े हम तलते हैं, है कि नहीं, तलते समय कितने वो बेचारे ऐसे ऊपर ऊपर आते हैं, तो वैसे हमारा डाला जाए, तो वैसे ही इसको डाला उसमें जैसे डाला वो बॉइलिंग जो ऑयल है वो ठंडा हो गया एक एक क्षण में, जैसे प्रहलाद के साथ हुआ था। तो फिर सारे आश्चर्यचकित हो गए, यमराज को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये पहले ऐसे केस थे। तो फिर वहाँ यमराज कहता है, पाप पुण्य और भक्ति को समझना बड़ा कठिन है, इन दोनों को समझना बड़ा स्ट्रगल करना होता है, यमराज कहते हैं। तो व्यासदेव को बुलाया तो व्यासदेव ने कहा, क्योंकि जिस स्थान में इस पापी व्यक्ति की हत्या हुई थी या मरा था, तो इसका शरीर उस स्थान में गिरा जहाँ गोपी चंदन पहले गिरा हुआ था। क्या था? गोपी चंदन। और गोपी चंदन का केवल स्पर्श होने मात्र से, अब व्यासदेव कहते शुद्ध भूत तत् प्रभावात, कहते उसके प्रभाव के कारण ये शुद्ध हो गया है। गोपी चंदन लिप्तांगो नरो नारायणो भवेत एतस्य दर्शनात् सद्यो ब्रह्म हत्या प्रमुच्यते। तो फिर यमराज ने कहा, ये तो यहाँ का निवासी नहीं है, उसको वैकुंठ जगत में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से हाँ, गोपी चंदन हम बहुत छोटा हल्का लेते हैं हाँ, लेकिन ये बहुत महान वस्तु है जो हमें प्राप्त हुई है हाँ, जिससे, और ये एक शरणागति का लक्षण भी है। आप कृष्ण के सरेंडर हो, उसका मतलब क्या है? भगवान के शरणागति के जो चिन्ह है वो अपने शरीर पर आप धारण कर रहे हो, है ना। जैसे प्रभुपाद को पूछा, ये आप गले में क्या पहनते हो? प्रभुपाद ने क्या कहा? हाँ, ये पट्टा पहन रहा हूँ, जैसे कुत्ते के गले में होता है। हाँ, जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं है उसका मतलब उसका कोई मास्टर नहीं है, वो आवारा गले का कुत्ता है हाँ, कोई भी उसके ऊपर पत्थर मारता है। तो हमें आवारा गले का कुत्ता नहीं बनना है, हमें किसका कुत्ता बनना है? कृष्ण का। इसलिए तुलसी धारण करनी चाहिए। तो उसी प्रकार से जैसे श्रेया, अभी पता नहीं सिटी का मुझे, लेकिन गांव में जो श्रेया है वो हमेशा ये लगाती है, क्या है उसको? बिंदी, कुमकुम हाँ, उसका मतलब है कि उनके पति हैं, स्वामी हैं। गांव में नहीं है उसका मतलब उनके कोई पति नहीं है। तो इस प्रकार से इसका मतलब हमारे क्या है? स्वामी हैं। ये तिलक जब हम धारण करते हैं, हमारे कोई मास्टर हैं, हम कोई अनाथ नहीं है, हम सनाथ है, आवारा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति तिलक धारण करके भ्रमण करता है, तो वास्तव में जहाँ जहाँ वो भ्रमण करता है उस सारे देश को वो पवित्र करता है। जिस घर में ये गोपी चंदन रहता है वहाँ द्वारका धाम निवास करता है और कृष्ण स्वयं निवास करते हैं, ऐसे शास्त्र वर्णन करते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये गोपी चंदन किसी वैष्णव को आप दान करते हो तो आप अपने कुल का उद्धार सरलता से करते हो। तो आप जब जाओगे तो एक्स्ट्रा गोपी चंदन ले जाओ यहाँ से और गिफ्ट करो हाँ। इधर उधर की फालतू चीज़ें हम लेके जाते बांटते रहते हैं, बेस्ट चीज़ गिफ्ट करने के लिए कुछ है तो यहाँ से सारा ये जितना भी हम गोपी चंदन यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ से निकलता है और सारे वर्ल्ड में जाता है जहाँ वैष्णवाज उसको धारण करते हैं। तो इसलिए ये गोपी चंदन बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण वस्तु है। और जब हम तिलक अपने शरीर में धारण करते हैं तो वास्तव में हम कृष्ण को अपने शरीर के अलग अलग भागों पर स्थापित करते हैं हाँ। द्वादश तिलक, कितने तिलक होते हैं? हाँ, हमें द्वादश तिलक सीखने चाहिए। और जैसे स्नान हुआ तो उसके तुरंत बाद सबसे पहले कोई चीज याद आनी चाहिए तो वो तिलक। स्नान के उपरांत तुरंत पहली कोई चीज मुझे धारण करनी है तो तिलक हाँ। सब बाकी चीजें हम लगाते रहते हैं, क्रीम्स और ना बाकी चीजें, लेकिन सबसे पहले क्या लगाना चाहिए? तिलक का स्मरण होना चाहिए स्नान के बाद हाँ, तो हम शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए कृष्ण को हम धारण करते हैं अपने शरीर के ऊपर। इसलिए कहते कि जो तिलक नहीं लगाता उसके जो आध्यात्मिक किए हुए कार्य है उनका कोई फल उसे प्राप्त नहीं होता, उसका जप तप यज्ञ तपस्या आदि। तो इसलिए तिलक लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, जब चैतन्य महाप्रभु स्टूडेंट्स को पढ़ा करते थे निमाई, जब वो निमाई के रूप में थे नवद्वीप में, तो कोई बालक यदि तिलक नहीं लगा के आता था तो वो कहते थे तुम्हारा ये स्मशान लग रहा है, माथा क्या लग रहा है? शमशान है, जाओ भागो यहाँ से, सबसे पहले तिलक लगा के आओ हाँ। तो तिलक लगा के कोई आता है तो हमें देखने में भी अच्छा लगता है और कृष्ण का स्मरण होता है।
अदरवाइज ये माथा क्या है, शमशान भूमि है। तो हमें हमेशा अपने माथे को तिलक से सुसज्जित रखना चाहिए। और ऐसे गोपी चंदन में कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। आप उडुपी कृष्ण जाते हो कर्नाटक में, उडुपी जो मध्वाचार्य को, हाँ जो उडुपी कृष्ण मिले थे वो किसमें थे, गोपी चंदन के बड़े से ढेले में थे। तो जो रुक्मिणी है वो कृष्ण के एक विग्रह की पूजा करती थी, छोटे से विग्रह थे, क्योंकि द्वारका वासियों ने कृष्ण की बाल लीलाओं को कभी देखा नहीं था, लेकिन सुना बहुत था, बाल रूप को भी नहीं देखा था। तो देवकी ने कहा कि अरे आपने तो यशोदा को इतना आनंद प्रदान किया अपनी बाल लीलाओं के द्वारा, तो मैं भी आपका बाल रूप देखना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, द्वारका में कहा। तो भगवान ने ना अपना बाल मुकुंद रूप प्रकट किया, देवकी माता देख के आश्चर्यचकित हो गई। फिर देवकी ये देख रही थी उस बालक को, तो रुक्मिणी ऊपर खड़ी थी अपने महल में, उसने भी देखा। फिर कृष्ण से कहा अपनी माँ को दिखाया अपना बाल रूप, मैं उस रूप की पूजा करना चाहती हूँ। तो उनको विग्रह दिए भगवान ने उस बाल रूप के, और फिर रुक्मिणी पूजा करने लगी। और जब ये द्वारका जब जलमय हो गई भगवान अप्रकट होने के बाद, तो वो जो विग्रह है वो गोपी तालाब में एक प्रकार से डाले गए थे, और वो एक गोपी चंदन के अंदर वो रह गए विग्रह। फिर यहाँ कोई एक व्यापारी आया था बोट से, जिसने गोपी चंदन बहुत बड़ी मात्रा में अपने साथ बोट में ले जा रहा था। तो दक्षिण भारत जाते जाते उसकी बोट किसी एक जगह संकट में मतलब फंस रहे थे, और उस समंदर के किनारे वहाँ श्रीपद मध्वाचार्य थे, हाँ जो महान आचार्य हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं मध्वाचार्य। तो उस नाव वहाँ थी, तो मध्वाचार्य ने उसको इशारा करने के लिए क्या किया, अपना ऊपर का उत्तरीय निकाला चद्दर और उसको हवा दिखाने लगा अपने कपड़े से। तो वो नाव सही रूप से पहुंची किनारे पर। तो वो नाव में जो भी व्यक्ति था उसने कहा आपने हमें बचाया है पूरी नाव को, बताइए आप क्या आपके लिए हम सेवा करें। मध्वाचार्य ने कहा आप कहाँ से आए हो, उसने कहा द्वारका से, फिर जरूर आप चंदन लेके आए होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हमारे पास दो बड़े बड़े ढेले हैं चंदन के, आप एक ले लो। तो उसमें से जब वो उठाने गए तो टूट गया, और उसमें से ये उडुपी कृष्णा निकले, छोटे से आप जाएंगे उडुपी सुंदर कृष्णा है, और दूसरे एक विग्रह निकले बलराम दूसरे से, तो दोनों विग्रह हैं। तो बलराम को तो उन्होंने मालपे बीच है वहाँ समंदर का, बहुत सुंदर उसके किनारे बलराम का मंदिर बनाया है, और वहाँ बलराम है। फिर कृष्णा को छोटे जो कृष्णा अपने कंधे में रखा उन्होंने, जो तिलक से निकले थे, और पूरा एक स्तोत्र का गान करते करते वो अपने आश्रम में ले गए और उडुपी कृष्ण को वहाँ स्थापित किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण सदैव इस गोपी चंदन में निवास करते हैं। गोपी चंदन ब्रज धूली है, ब्रजवासियों की चरण धूली है, जो हमें सदैव अपने माथे में धारण करनी चाहिए। भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक में उपाय है क्या, कि महान वैष्णवों के चरण धूलि से अभिषेक करना। क्या करना, अपना अभिषेक चरण धूलि से, तभी हमारे सारे अनर्थ खत्म हो सकते हैं और हमारा मन कृष्ण में निमग्न हो सकता है। इसलिए स्वयं कृष्ण भी द्वारका में रहते तो हमेशा हेडेक होता है, सर दर्द। कितनी पत्नियां हैं,
16,108।
सरदर्द नहीं होगा तो क्या होगा, हाँ तो इसलिए वो दवाई पूछते हैं, किसको पूछते हैं, नारदा को। और दवाई क्या थी,
गोपियों की चरण धूलि,
गोपियों की नहीं भक्तों की चरण धूलि। अभी बाकी भक्त थोड़े से रिजर्व है, रिजर्व मोड में रहते हैं, तो नारद तो स्वयं भक्त है। अभी दूसरे के पास जाने की क्या हो सकता थी नारद को। नारद कहते ये ले लीजिए भगवान, मैं अपने दोनों पांव लंबे फैलाता हूँ। अब मैं वो खुद कितना भ्रमण करते, नारद ने कहा नहीं ये उचित नहीं है। ये द्वारकाधीश तो गए रानियों के पास, आप इतने महान भक्त हो, भगवान को चरण धूलि चाहिए। कहते पत्नी अपनी चरण धूलि पति के माथे पर, आज तो कलयुगा में तो कुछ भी हो सकता है, हाँ ये तो कल्चर है, एटिकेट्स है, हाँ सदाचार है, पति धर्म पत्नी धर्म है। वो जानते थे रुक्मिणी आदि, उन्होंने कहा नहीं, वो भी थोड़ी सी रिजर्व थी, पूर्ण शरणागति नहीं थी एक प्रकार से। तो उन्होंने कहा नहीं दे सकती। तो भगवान नारद ने सोचा रे कहाँ जाए, कहाँ भ्रमण करे, तो पहुंचे एक ही स्थान। सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही जगह है, वृंदावन। सारी समस्याओं का हल कहाँ है, वृंदावन। वैसे भक्त परेशान हो जाते हैं तो थोड़ा चले जाते हैं, एक ही जगह जाते हैं वृंदावन, दो दिन रह के आता, कुछ होता है ना स्ट्रगल होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ भक्ति आजकल अच्छा नहीं चल रहा है तो जाते हैं वृंदावन जाते हैं। तो वैसे ही नारद ने सोचा वृंदावन जाता हो और वृंदावन की जो गोपिकाएं हैं उनको अप्रोच करता हूँ। तो गोपिकाओं के पास गए तो वो कृष्ण विरह में यमुना के किनारे में भ्रमण कर रही थी और वो गोपिकाएं आपस में, क्योंकि वो रह नहीं सकती, खाली नहीं रह सकती, वो कृष्ण वो कहती रहेगी नहीं कृष्ण के बारे में मत बोलो, हाँ ऐसा बोलते बोलते पता नहीं 8 घंटे बीत जाएंगे, फिर कहेगी अरे क्यों बोला वो कृष्ण के बारे में। मतलब ये एक्चुअली नेचुरल वो है कृष्ण प्रेम का प्रभाव, कि कृष्ण प्रेम से जब भर जाता है व्यक्ति तो कृष्ण नाम रूप गुण लीला के अलावा कुछ और सोच नहीं सकता वो। हाँ लहरें जैसे आती है ना समुद्र को एक के बाद एक, एक के बाद एक, वैसे उसका हृदय उमड़ता है बाहर निकलता है। तो वैसे गोपिकाओं को कहा कि आप दे दो, हाँ चरण धुले चाहिए, कृष्ण का सर दर्द हो रहा है। तो गोपिकाओं ने कहा नारदा हाँ कुछ बोरी वगैरह लेके आए हो क्या आप, हाँ कुछ थैला लेके आए हो कि नहीं ले जाने के लिए। तो गोपिकाएं तो तैयार थी, उन्होंने कहा आपको डर नहीं लग रहा है, भगवान के सर में माथे में आपकी चरण धूली लगानी होगी। तो कहते नहीं, कृष्ण के लिए हम कुछ भी नरक जाने के लिए तैयार है, ये शरणागति का लक्षण है। तो गोपिकाएं ये सारी गोपियां जाती है तुरंत यमुना में प्रवेश करते हैं, अपने पांव अच्छे से धोती हैं और आती है बाहर और नाचने लगती है,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम,
नाचने लगती है। और जितना नाचते जा रहे थे कहते नारदा कितना धूली चाहिए, हाँ ले लो। नारद तो वह मूर्छित हो जाते हैं, नारद गोपियों के भक्ति के आगे, हाँ ये जो नारद आदि जितने भी हैं उनका भगवत भजन कम कुवत है। तो इस प्रकार से ये जो गोपी तालाब है जो सारी महिमाओं से भरा पड़ा है और ये विशेष लीला स्थली है जिसका हमें स्मरण करना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। तो गोपी तालाब में हम जाएंगे जहाँ आप गोपी तालाब में आप जा सकते हैं और वहाँ आचमन कर सकते हैं, जल ले सकते हैं और फिर गोपियों के इस लीला का स्मरण कर सकते हैं और जाते जाते गोपी चंदन ले सकते हैं और गोपी चंदन व्रत ले लो। जब तक ये मेरे पास माथा है तब तक क्या होगा इस पर तिलक होगा, हाँ मतलब कुछ तो हम ले ले यहाँ ना, व्रत ले ले, अरे अदरवाइज कुछ बीमारी आ जाएगी, डॉक्टर कुछ चिपका देगा यहाँ, कुछ चीज़ें होती है ना, हाँ कुछ यहाँ कुछ फोड़ा आ गया तो इधर लगा के घूमेंगे हम पूरा कई महीने, हाँ कुछ ऑपरेशन हो जाएगा तो यहाँ कटिंग स्टिचेस ऐसी होगी। तो बेस्ट है क्या करो, माथा माथे में लगाओ तिलक हमेशा, हाँ चाहे सर्दी हो गर्मी हो दिन हो रात हो जब भी, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। यमदूतास देखते पहले माथा किसका खाली है गले में, वो दो चीजें देखते हैं, कंठी माला माथा, इससे पता चलता है। और उनको ये भी तो मतलब चाहे हम भक्ति नहीं भी कर रहे फिर भी रखे तो वो थोड़ा सा हमें सुकृति है, हाँ तो लेकिन इससे क्या होगा कि कृष्ण का स्मरण बढ़ेगा और हमेशा सत्व गुण में रहते हैं हम, कौन से गुण में, सत्व गुण का विकास होता है। तो इसलिए तिलक धारण करना, और तिलक धारण करने का मंत्र हमें याद होना चाहिए, ललाटे केशव मो जो मंत्र है वो पूरा याद करें और 12 जगहों में भगवान को स्थापित करें, भगवान के सारे नाम हर रोज होना चाहिए, चाहे 10 बार दिन में स्नान करें तो 10 बार क्या लग जाना चाहिए, तिलक, स्नान के बाद हमेशा तिलक, ये मतलब होना चाहिए। जैसे प्रसाद पाने के बाद हाथ धोते हैं ना हम, या वैसे लेके घूमते हैं नहीं, हाँ तो ऐसे होना चाहिए। तो ये विशेष गोपी तालाब है और बहुत सारी लीलाएं हैं द्वारका की, तो हम जहाँ जहाँ समय मिलेगा वहाँ वहाँ हम डिस्कस करेंगे। और दोपहर को जाने के बाद भी गोमती के बारे में, द्वारकाधीश के बारे में और द्वारका धाम के बारे में और श्रवण करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा हरे।